आप हैं SBS हिंदी के साथ।
SBS हिंदी पर शाम 5 बजे सुनिए गौरव वैष्णव के साथ मुख्य समाचार। क्वींसलैंड में 30 साल के एक शख्स की मौत के बाद ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 से हुई मौतों का आंकड़ा 103 पहुंचा। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा, भारत के प्रधानमंत्री ने की सेना प्रमुखों के साथ बैठक। और राजस्थान के चुरू में 50 के पार पहुंचा पारा। और अब समाचार विस्तार से। 30 साल के एक शख्स की मौत के बाद केंद्रीय क्वींसलैंड में कोरोना वायरस के नए मामलों को रोकने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी पूरी कोशिश में लगे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के संक्रमण से मरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इस मौत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 103 पहुंच गया है। इस शख्स का साथी भी बीमार है, जिसे रॉकहैम्प्टन अस्पताल में ले जाया गया है। क्वींसलैंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जेनेट यंग ब्लैक वाटर के माइनिंग टाउन, जहाँ से दोनों लोग आते हैं, वहाँ कोरोना वायरस से संबंधित क्लिनिक स्थापित किए जा रहे हैं, उन्होंने ऐसी जानकारी दी है।
So it is really important that anyone in Blackwater today who has any symptoms at all come forward to the fever clinic that's being set up, both to find out where you acquired it, but also whether or not you've passed it on to other people. Because we know that you can pass on the infection for up to 48 hours prior to developing symptoms.
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर मार्क मैकगोविन ने बताया है कि उन्हें आशंका है कि फ्रीमेंटल में खड़े एक पशुओं के जहाज के चालक दल में से और लोग भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। पोर्ट के कर्मचारियों के संपर्क में आए लोगों की खोज की जा रही है, हालांकि ये कर्मचारी एकांतवास में हैं। कृषि मंत्री डेविड लिटिल प्राउड ने इस मामले में कृषि विभाग की प्रतिक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि विभाग ने बीमार चालक दल के बारे में शुक्रवार को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ के स्वास्थ्य विभाग को एक ईमेल भेजा था। प्रीमियर मैकगोविन ने कहा कि गलती हुई है और इससे सबक सीखा जाना चाहिए।
I'm disappointed that the email from the federal department did not raise red flags inside the Department of Health. In these times, it plainly should have. I also think we need to have better and more comprehensive communications with the Commonwealth than just an email. Any report of crew or passengers on board ships or aircraft entering this state with COVID-like symptoms must be given the attention it deserves.
New South Wales सरकार ने सार्वजनिक सेवा वेतन वृद्धि पर एक साल तक रोक की घोषणा की है। इस कदम से सरकार को करीब $3 बिलियन की बचत होने की उम्मीद की जा रही है। प्रीमियर ग्लेडिस बेरेजैक्लियन ने कहा कि इस राशि को स्वास्थ्य और नौकरियों के लिए खर्च किया जाएगा।
I don't think all of us have come to terms with the economic consequences and what that means. We don't want this to be a deep economic consequence which we can't get out of. We don't want this to be a situation where our economy contracts forever and people don't have jobs forever. And I worry about young people trying to get into the job market for the first time, or people who are older and worry that once they've lost their job, they'll never get a job again.
आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल महीने में न्यू साउथ वेल्स में ही 2,20,000 से ज़्यादा लोगों ने नौकरी खोई है। ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने लीक हुए दस्तावेजों पर समाचार लेखों के मामले में न्यू कॉर्प की पत्रकार अनिका स्मिथहर्स्ट के खिलाफ आरोप तय करने या नहीं करने को लेकर लिए गए समय पर सफाई दी है। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के उपायुक्त इयान मैककार्टनी ने इस बात की पुष्टि की कि मुकदमा चलाने के लिए अपर्याप्त सबूत होने की वजह से अनिका पर कोई आरोप तय नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें कि साल 2018 में एक रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से ही उनके खिलाफ जांच चल रही थी। AFP के उपायुक्त इयान मैककार्टनी का कहना है कि यह बहुत जरूरी था कि जांच पूरी हो।
Unauthorized disclosure investigations, as some of you here would be aware, are complex investigations in terms of the inquiries we have to undertake. Secondly, as you're well aware, we were challenged before the High Court, and we had to await the decision and the outcomes of the High Court decision before we had the opportunity to review the material and come to you today to make this decision.
दो कानून फर्म जांच के लिए की जाने वाली स्ट्रिप सर्च को लेकर न्यू साउथ वेल्स पुलिस के खिलाफ एक स्ट्रिप सर्च क्लास एक्शन शुरू करना चाहती हैं। रेडफर्न लीगल सेंटर और स्लेटर एंड गॉर्डन लॉयर्स कानूनी कार्रवाई शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत ये उन हज़ारों लोगों को मुआवजे के हकदार बनाना चाहते हैं जिन्हें पिछले 6 सालों में न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने तथाकथित गैर कानूनी तौर पर स्ट्रिप सर्च किया है। रेडफर्न लीगल सेंटर के सॉलिसिटर समंथा ली का कहना है कि इस मामले में जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
The law is vague, fails to provide clear guidance to police, and fails to provide very much needed safeguards to members of the public. That's why we need legislative change, and that's why we need this class action, so people can claim for damages for the harm that they have already entailed.
और अब खबरें भारत से। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ दिनों से जारी तनाव के बीच भारतीय समाचार चैनल NDTV ने 2 सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से खबर दी है कि चीन ने लद्दाख क्षेत्र में पिछले कुछ महीने में अपने एयरबेस का विकास किया है। खबर में बताया गया है कि ये एयरबेस नगारी कुनशा एयरपोर्ट पर है जो कि पेंगयोंग झील से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर तिब्बत में है। 6 अप्रैल 2020 की सैटेलाइट तस्वीर में इस एयरपोर्ट और में रनवे को देखा जा सकता है और 21 मई 2020 की तस्वीरों में काफ़ी कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। नई तस्वीर में बड़े पैमाने पर एयरबेस के निर्माण की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। चीन ने बढ़ते तनाव पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को पारदर्शिता बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ और चीन के साथ जो भी हो रहा है उससे देश को अवगत कराना चाहिए।
नेपाल में क्या हुआ, किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ, लद्दाख में क्या हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लियरली उनको सरकार को बताना चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है मुझे। जो चाइना और हिंदुस्तान की बात है, अभी वो लाइव इशू है तो उसके बारे में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, वो मैं सरकार के विजडम पे छोड़ना चाहता हूँ।
भारत में राजस्थान के चुरू में मंगलवार को तापमान 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 10 सालों में मई माह में चुरू में रिकॉर्ड किया गया ये दूसरा सबसे ज़्यादा तापमान है। मौसम अधिकारियों के मुताबिक 19 मई 2016 को ज़िले का तापमान 50.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। राजस्थान के अन्य शहरों में भी लू का प्रकोप जारी है। बीकानेर में तापमान 47.4 डिग्री, श्रीगंगानगर में 47 डिग्री, कोटा में 46.5 और राजधानी जयपुर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने मंगलवार को जानकारी दी है कि भारत के आरोग्य सेतु ऐप को अब ओपन सोर्स कर दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि विश्व भर में जितने भी कोविड-19 से जुड़े ऐप काम कर रहे हैं उन सब के यूजर्स से कहीं ज़्यादा लोग आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस ऐप के जरिए करीब 3,000 जगहों को हॉटस्पॉट घोषित करने में मदद मिली है।
ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल द कोविड-19 ऐप्स related apps put together, actually Arogya Setu is bigger than all of them in the world. More than 3,000 hotspots at sub post office level have been predicted almost 3 to 17 days ahead of time.
भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोविड महामारी के मद्देनज़र प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के मामले में महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार को नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा कि रेलवे ने महाराष्ट्र को 145 ट्रेन भेजी थी लेकिन एक दिन में महज 24 ट्रेन ही चलाई जा सकी। इसके लिए उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
लीजेंड रेलवे वांटिंग टू सर्व आवर माइग्रेंट्स एंड लुकिंग एट द प्लाइट ऑफ द माइग्रेंट्स इन महाराष्ट्र होम दे आर नॉट इवन टेकिंग केयर ऑफ। The total state administration and government has totally collapsed. The leadership is absent.
गठबंधन सहयोगियों के बीच दरार की खबरों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बुधवार को सत्ताधारी पार्टियों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने आज बैठक बुलाई है। NCP प्रमुख शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत के बाद अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि शिवसेना और NCP पार्टी ने अलग होने की बात को नकार दिया है लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का एक बयान के बाद महाराष्ट्र में बनी गठबंधन सरकार की दो पार्टियों शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सामने असहज स्थिति पैदा हो गई है। राहुल गांधी ने मीडिया की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि मैं यहाँ की स्थिति को कुछ अलग रखना चाहूँगा। महाराष्ट्र में हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं लेकिन हम महाराष्ट्र में प्रमुख डिसीजन मेकर नहीं हैं। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 50 रुपये 19 पैसे और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 66 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। फुटबॉल फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया ने साल 2019-20 ए लीग के सीज़न को पूरा करने के लिए 36 दिनों में 32 मैचों का प्रस्ताव दिया है। द डेली टेलीग्राफ की एक खबर के मुताबिक 18 जुलाई से ये मैच शुरू हो सकते हैं, जिनका समापन 22 अगस्त को एक भव्य फाइनल के साथ हो सकता है। ये सभी मैच एक ही जगह खेले जाएंगे, ये जगह सिडनी हो सकती है या फिर मेलबर्न और ब्रिस्बेन। इन मैचों में दर्शकों के भाग लेने की अभी संभावना नहीं है, हालांकि अगर सरकार कोविड 19 को लेकर प्रतिबंधों और दिशा निर्देशों में ढील देती है तो ये परिदृश्य बदल सकता है। और अब डालते हैं नज़र कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। शुरुआत पर्थ से। पर्थ में बारिश तेज़ होने की आशंका है, यहाँ पर अधिकतम तापमान 20 डिग्री न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है, अधिकतम तापमान 17 डिग्री न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में बारिश की संभावना है, अधिकतम तापमान 16 डिग्री न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में सुबह के वक्त कोहरा छा सकता है, इसके बाद आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की आशंका है, यहाँ पर अधिकतम तापमान 16 डिग्री न्यूनतम 2 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में गुरुवार को ज़्यादातर धूप रहने के आसार हैं, अधिकतम तापमान 21 डिग्री न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में भी धूप रहने के आसार हैं, अधिकतम तापमान 25 डिग्री न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में धूप रहने की संभावना है, अधिकतम तापमान 32 डिग्री न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। भारत की राजधानी नई दिल्ली में धूप रहने की संभावना है, अधिकतम तापमान 42 डिग्री जबकि न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचारों में आज इतना ही।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।